इस सृष्टि रंगमंच पर जीवन प्राप्त करने के बाद हर इंसान अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई ना कोई प्रवृत्ति में व्यस्त रहता है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, समझ है, इसलिए जीवन में कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य भी रहता है और उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई प्रवृत्ति में वो जुड़ा हुआ रहता है। आज से 300-400 वर्ष पहले के मानव जीवन को हम देखें, व्यक्ति बहुत कम साधनों में नैसर्गिक रूप से अपने जीवन को जीता था, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस बनते गए, उनकी कामनाएं बढ़ती गई और उन कामनाओं की पूर्ति हेतु नई नई प्रवृत्ति भी विकसित होती गई। जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक आवश्यकताएं, हवा, पानी, खुराक, रोटी, कपड़ा, मकान, उसे प्राप्त करने के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि व्यक्ति केवल 5 तत्वों का बना हुआ शरीर मात्र नहीं है, लेकिन एक चैतन्य शक्ति भी है और इसलिए हम अनुभव करते हैं कि केवल पेट के पोषण से ही जीवन में संतुष्टि नहीं होती है, व्यक्ति को हृदय का पोषण भी चाहिए। एक अमेरिकन धनाढ्य की कहानी मैं आपको सुनाऊं, काफी वर्षों पहले की बात है। बहुत बड़ा उद्योगपति था, बहुत धनाढ्य, अमेरिका से यूरोप वीक में रोज बाय एयर ट्रैवल करता था, काफी फैक्ट्रियां थी, परिवार था, अच्छे मकान, साधन सब कुछ था, लेकिन ये सब कुछ होने पर भी वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था, परेशान था, जिसके कारण एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूं। इतने साधन, धन, वैभव और संपत्ति होने पर भी वो अपने जीवन से इतना परेशान था, उसने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए जो जो प्रयास किए, उस बात को आप सुनेंगे तो आप निर्णय कर पाएंगे। उसने सोचा कि आज जहर पीकर मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूं, लेकिन फिर उससे विचार आया कि जहर पीने से भी नहीं मरा तो, क्योंकि कलयुग में जहर भी शुद्ध नहीं मिलता है। तो उसने सोचा कि जहर पीकर नदी के ब्रिज पर जाकर एक बड़ा रस्सा लटकाते हैं और उससे उतरकर गले में फांसा डालकर नदी में कूद पड़ूंगा और अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। फिर सोचता है कि रस्सा टूट जाएगा तो, इसलिए एक पिस्तौल तैयार करता है, जहर पीकर नदी के ब्रिज से रस्से से लटककर नीचे उतरकर गले में फांसा डालकर अपने आप को पिस्तौल मारने के लिए जाता है। वो पिस्तौल गोली उसको लगने के बजाय रस्से से लग जाती है, रस्सा टूट जाता है, नदी में गिर जाता है और बहुत पानी पी लेने से वॉमिट हो जाती है और जहर बाहर निकल जाता है और कोई उसको बचा लेता है। कहने का भावार्थ ये है कि अपने व्यवसाय के द्वारा भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी अगर व्यक्ति की बुद्धि में अपने जीवन, अपने अस्तित्व, अपने आसपास के जगत के बारे में अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। आज व्यवसाय, क्योंकि बिजनेस हमारे जीवन का एक ऑक्यूपेशन है, जीवन अलग चीज है, लेकिन आज बिजनेस ही हमारा जीवन हो गया है और इसलिए उनके द्वारा जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसका आनंद हम खुद लें, शांति अनुभव करें, वो आज नहीं रहा है। और इसलिए व्यवसाय करते करते व्यक्ति का मानस भी हर बात में व्यवसाय की ही वृत्ति अपना लेता है और इसलिए आपसी रिलेशन के अंदर जो निस्वार्थ प्यार मैत्री होनी चाहिए वो भावना नहीं रहती है, लेकिन हर संबंध एक हिसाब के आधार पर ही देखा जाता है। जीवन भर इतनी मेहनत करके हम केवल धन साधन ही इकट्ठे कर पाते हैं तो ये तो कीड़े और मकोड़े भी एक एक कण करके अनाज के कणों का, चीनी के कणों का ढेर कर देते हैं। हमने इंसान होकर जीवन में केवल धन और साधन ही कमाया तो एक बुद्धिशाली प्राणी होने के नाते हमने अपने जीवन में विशेष क्या प्राप्त किया? क्योंकि हमारा समग्र बुद्धियोग जब बिजनेस को हम जीवन बना देते हैं तो हमारी बुद्धि उसी में मय हो जाती है और इसलिए न हमें आत्मकल्याण की कोई बात बुद्धि में आती है, न पारिवारिक संबंधों में शुद्ध स्नेह और सुख अनुभव करने की बात आती है और उसके कारण अंत तक हमारी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वही बातें हमें याद रहती है। एक शेठ के किस्से को हम जानते हैं कि एक शेठ जी थे, बहुत बड़ा बिजनेस था, बीमार पड़े और इतना सीरियस कंडीशन हो गई कि उनके सब बच्चों को, संबंधियों को बुला लिया गया कि अभी तो ये लास्ट घड़ी पर है, उनके तीनों बच्चे भी आ गए। शेठ ने पूछा कि बड़ा बच्चा कहाँ है, तो सबने कहा कि देखिए यहाँ ही है, आपकी सेवा में ही हाजिर है। बीच वाला कहाँ है, बोला ये भी यहाँ है। और छोटे वाला बच्चा कहाँ है, तो बोला ये भी आपके सामने है। सब सोचने लगे कि शेठ अपने सभी बच्चों को याद कर रहा है। सभी बच्चे हाजिर थे तो शेठ ने कहा कि तीनों यहाँ हैं तो दुकान में कौन है। हमारा बुद्धि योग व्यवसाय में कॉन्शियस हो गया है, हमारा अपना भी इससे भिन्न एक अस्तित्व है और हमें अपने उस आंतरिक विकास के लिए भी जीवन में कुछ करना होता है, ये बात हम नहीं समझते हैं। कई बार हमारे पास ऐसी योग्य मानसिक स्थिति भी नहीं रहती है कि हम जो कुछ कमाते हैं उसको सुख से भोग सके, क्योंकि जो भी ये साधन है इनका सुख भी तब है जब हमारी मानसिक स्थिति सुख की हो। नहीं तो कितने मित्र होते हैं, महफिल होते हैं, सब साधन है, प्रसंग है, लेकिन मन ही ठीक नहीं है, खुद को ही आनंद नहीं है, तो हमें इन बातों में आनंद प्राप्त नहीं होता है। कहने का भावार्थ ये है कि जब से औद्योगिक संस्कृति हमारी बन गई है, मनुष्य निरंतर एक आर्थिक खींचातान, सामाजिक संघर्ष और एक मानसिक रोगिष्ट स्थिति को प्राप्त होता रहा है। इसलिए आध्यात्मिकता हमें एक क्षण के लिए सोचने के लिए कहती है कि आखिर हम कौन हैं, जीवन क्या है और जीवन की वास्तविक उपलब्धि हम किसको कहेंगे। वहां हमें अपने आंतरिक स्वरूप को जानने की आवश्यकता पैदा होती है। जीवन को यथार्थ रूप से जीने के लिए जैसे साधनों की आवश्यकता है, ऐसे ही और दो बातों की आवश्यकता है। एक तो व्यक्ति के पास, व्यक्ति को व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी यथार्थ समझ चाहिए। आज हम व्यक्ति का उपयोग करते हैं और वस्तु को प्यार करते हैं। हमारा घर साधनों से भरता जा रहा है, लेकिन हम अंदर से खाली होते जा रहे हैं। इतने सब संबंधों के बीच में भी, व्यक्ति और साधनों की भीड़ के बीच में भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि जो निस्वार्थता, शुद्ध प्यार, निरपेक्षित जो हमारा एक दो के प्रति व्यवहार होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हमारी जो आंतरिक योग्यताएं हैं, शक्तियां हैं, गुण हैं, वो कम हो रहे हैं। जो कुछ हमारे पास है वो कम है और भी हमें चाहिए। ये रोग आज हरेक को लागू हो गया है। इसलिए ऐसी भोगवादी स्थिति से अगर हमें जीवन का सही आनंद लेना है, तो हमें वास्तव में वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप के तरफ जाना होगा। जब हम पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, तो वास्तव में पॉजिटिव पर्सनालिटी ही हमारा रियल पर्सनल डेवलपमेंट है, और उसके लिए हमारे पास रियल अंडरस्टैंडिंग चाहिए जीवन के बारे में, आसपास के जगत के बारे में, आलोक और परलोक के बारे में, कर्म की गहन गति के बारे में। जब तक ये मान्यताएं हमारी सही नहीं होंगी, हम जीवन में सही अर्थ में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी बिलीफ्स को यथार्थ करना होगा और सत्य आध्यात्मिक ज्ञान हमारी मान्यताओं को सही करता है, और जब हमारी मान्यताएं सही होती है तब हमारा जीवन चक्र भी सही चलता है, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, हमारी प्रवृत्ति उस अनुसार ही चलती है जैसी हमारी स्मृति होती है, और हमारी स्मृति में वही बात होती है जो सारा दिन हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, आंखों से पढ़ते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, हम इन कर्मेंद्रियों के द्वारा अपने मन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो हमारी मेमोरी में रजिस्टर्ड हो जाती है और उस मेमोरी के अनुसार हमारी एक मेंटल स्टेट तैयार होती है। उसी के आधार पर हमारे थॉट्स चलते हैं, वैसे ही हमारा विजन, वैसा ही एटीट्यूड, वैसा ही एक्शन, वैसा ही बिहेवियर और ऐसी ही पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है। अगर हम केवल संपत्ति और साधन के लिए ही सोचेंगे तो नेचुरली हमारे चिंतन में, हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि में, हमारे कर्म में और व्यवहार में वही बातें आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जहां तक जीवन की आवश्यकताएं हैं, हम अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जी सके, उसके लिए जरूरी इन बातों का चिंतन हम करें। लेकिन इसके साथ साथ हम सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की बातें भी सुने, उसके लिए भी कुछ समय चिंतन के लिए दें और साथ साथ अभ्यास करते हैं तो एक ऐसा बैलेंस हमारे जीवन में आता है जिससे हम भौतिक साधनों का उपयोग भी करते हैं लेकिन साथ साथ हमारे अंदर डिपेंडेंसी डेवलप नहीं होती है। हमें ये स्मृति रहती है कि आत्मा मास्टर है, रचयिता है, मालिक है और इन सब साधनों का हमें जीवन में उपयोग करना है लेकिन हमें उसके गुलाम नहीं बनना है। आप जानते हैं इस आध्यात्मिक विचार को कि व्यक्ति पहले पैसे के पीछे दौड़ता है लेकिन व्यक्ति जब महान बन जाती है तो पैसा उसके पीछे दौड़ता है। जब हम अपनी एक आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं तो अनुभव है हम लोगों का कि भौतिकता स्वतः हमारे चरणों में आती है और इसलिए आदर्श जीवन, यांत्रिक विकास और भौतिक विकास, व्यावसायिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बैलेंस का हमारे सामने बहुत सुंदर देवी देवताओं का एग्जाम्पल है। हम देखते हैं देवी देवताओं के चित्रों को कि उनको हम कितना धन, साधन, अलंकार, आभूषणों से सज्ज दिखाते हैं, रत्न जड़ित ताज से सुसज्जित दिखाते हैं। ये उस बात का प्रतीक है कि देवी देवताएं भौतिक रूप से भी संपन्न थे लेकिन हम कभी भी इन देवी देवताओं को भौतिकवादी नहीं कहते हैं, कभी भी हम उनको फैशनेबल नहीं कहते हैं, कभी भी हम उनको भोगी नहीं कहते हैं, क्योंकि उन देवी देवताओं के व्यक्तित्व को अगर आप देखेंगे, कोई भी सुंदर देवी या देवता की प्रतिमा के आगे जाकर 5 मिनट साइलेंस में आप ऊपर से लेकर नीचे तक उनका निरीक्षण करें, आप उन देवी देवताओं की आंखों को देखें, उनके मुख के भाव को देखें, उनके समूचे व्यक्तित्व को आप देखें, आप पाएंगे कि उनकी आंखों में जो निर्दोषता है, उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता के भाव है और उनके समूचे व्यक्तित्व में जो अंतर्मुखता है वो आज हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए हमारा जीवन भोगी जीवन बन गया है। भोग रोग को आमंत्रित करता है, इसलिए हमारा जीवन रोगी बन गया है, न केवल शारीरिक रूप से लेकिन मानसिक तंदुरुस्ती भी हमने गंवा दी है, क्योंकि हमारा मन सतत ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहम, ऐसी ही भावनाओं के चिंतन में रहता है। तो अब ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है, और इसलिए हमें ये विकास जबकि हमने बहुत कर लिया है, तो अब हम अपने निजी विकास के लिए भी समय दें, अपने निज स्वरूप को पहचानें, जो पाठ आपने यहां आने से ही पक्का किया है कि हम केवल शरीर नहीं है। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर को खिलाना पिलाना पहनाना घुमाना उसी बातों में हमारी बुद्धि जाती है, लेकिन शरीर केवल एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। जीवन का अंतिम साध्य आत्म कल्याण है, हमारा श्रेष्ठ चरित्र है, श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ संस्कार है, और इसलिए शरीर रूपी साधन को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, लेकिन उसे साध्य नहीं समझना है। साध्य आत्म कल्याण है, और उसके लिए सही ज्ञान, गुण और शक्तियों के विकास का भी हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।